नमस्कार, मैं रविश कुमार। पूरे देश में जहां भी राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले को दो तरह से देखा जा सकता है। एक केस के बाद भी सरकार और पुलिस के पास किसी नागरिक का गला दबाने के लिए तमाम धाराएं मौजूद हैं, और दूसरा कोर्ट की अंतरिम रोक से यह साबित भी हो जाता है कि सरकार और पुलिस लोगों की आवाज दबाने के लिए इस तरह के कानून का इस्तेमाल करती है। एक आजाद मुल्क में नागरिक के पास बोलने की आजादी हो, उसे किसी तरह से डराया नहीं जाए, इसलिए इस कानून को चले जाना चाहिए। यह बड़ी बात है कि कोर्ट के इस अंतरिम रोक ने सरकारों की करतूतों को उजागर कर दिया है, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि इससे सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी अंग्रेजी हुकूमत ने बाल गंगाधर तिलक और गांधी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया, आज के दौर में कई पत्रकारों, समाज के हितों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो रहा है। बेशक आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है जिन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व सांसद अरुण शौरी, रिटायर्ड जनरल SG बोमबाटकेरे, पत्रकार अनिल चमड़िया, पत्रकार पेट्रिसिया मुखीम, पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचा, पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ल, पत्रकार अनुराधा भसीन, असम पत्रकार संघ, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, NGO कॉमन कॉज ने अलग अलग याचिकाओं में राजद्रोह की धारा 124A को चुनौती दी। तब कोर्ट ने कहा कि हम इसकी वैधता की जांच करेंगे। पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल अप्रैल बीत जाने तक सरकार को ध्यान नहीं आया कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस कानून की समीक्षा की जाए। क्या इस कानून को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को श्रेय मिल जाता उसकी चिंता थी, या उन लोगों को श्रेय मिल जाता जो हमेशा नागरिकों के अधिकार के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें श्रेय न मिले इसकी चिंता थी? लेकिन इतिहास अखबारों की हेडलाइनों में दर्ज नहीं रहता, वह कहीं और भी मिलता है और वहां लिखा होगा कि इस कानून को चुनौती देने के लिए वकीलों में कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायणन, PB सुरेश, प्रसन्ना S, सिद्धार्थ सीम, तनिमा किशोर ने बहस की। आज की ये हेडलाइन इन याचिकाकर्ताओं और वकीलों की वजह से भी है।
जिस तरह से UAPA का दुरुपयोग किया गया है, चाहे भीमा कोरेगांव के केस में, चाहे दिल्ली रायट्स के केस में, चाहे और केसेस, यानी कि जो लोग बिल्कुल पीसफुली जैसे उमर खालिद है, वो तो ये कह रहे थे कि भाई हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हमको उसका जवाब संविधान से देना चाहिए। उनके खिलाफ भी आपने UAPA लगा दिया। UAPA में भी अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में एक पार्ट ये भी है जो कि बिल्कुल सेडिशन की तरह, कि स्टेट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना, वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। और UAPA में आपने बेल का जो कानून है, बेल का प्रावधान इतना सख्त कर दिया कि कोई कोर्ट UAPA के केसेस में बेल देने से बहुत कतराती है। मेरी राय में ये दोनों जो पार्ट हैं UAPA के, दोनों गैर संवैधानिक हैं। एक तो डेफिनेशन अनलॉफुल एक्टिविटी की, जिसमें उन्होंने सेडिशन की तरह ही डिफाइन कर दिया अनलॉफुल एक्टिविटी को, सरकार या स्टेट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना, यही अनलॉफुल एक्टिविटी है। और दूसरा बेल का जो प्रोविजन है कि जब तक कोर्ट ये ना तय कर ले कि भाई कोई जना इनोसेंट है, तब तक उसको बेल नहीं दी जाएगी। और ये कोर्ट ट्रायल के पहले कैसे तय कर लेगा, इसीलिए हमने इसको भी चैलेंज किया है। वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह तो उजागर कर दिया कि सरकारें इस तरह के कानून के साथ क्या कर रही थीं, लेकिन इस अंतरिम रोक के बाद भी सरकारों के पास एक नागरिक को डराने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। वो पुलिस अभी भी मौजूद है उसी तरह से, जो किसी के इशारे भर से कानून की धज्जियां उड़ाती हुई किसी को भी जेल में डाल देती है, और फिर आपको वर्षों इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ देती है, जिसमें आप बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा करने वाले पुलिस अफसर नौकरी छोड़कर सरकार वाली पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते और मंत्री बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि कैरमा पत्रिका के संपादक विनोद के जोश ने ट्वीट किया है कि कहने को तो मेरे और मेरे जैसे पत्रकारों के लिए कुछ सिरदर्द कम हुए हैं। मेरे खिलाफ UP, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और दिल्ली में राजद्रोह के मामले दर्ज हैं। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार राजद्रोह के साथ वही करेगी जो UPA सरकार ने पोटा के साथ किया और UAPA जैसे और भी घातक कानून बना दिए। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। राजद्रोह का कानून हटेगा या उससे भी सख्त दूसरा कानून आएगा, जैसे पोटा के बाद यूएपीए आया। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इसके बाद पुलिसिया यातना खत्म होने वाली है और सरकारें प्रेस से लेकर नागरिकों का गला घोटना बंद कर देंगी। आप जानते हैं कि किस तरह लोगों को फंसाया जाता है और बिना जवाबदेही के किसी भी धारा का इस्तेमाल होता है, बल्कि बहस यह होनी चाहिए कि ऐसी धाराओं के इस्तेमाल में धारा लगाने के वक्त जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी कोई जवाबदेही हो। अगर पुलिस अफसर ने किसी को फंसाने की नीयत से फर्जी धाराएं लगाई हैं तो उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस तरह की बहस के दरवाजे खुलते हैं या हम इसकी बात ही नहीं करेंगे?
रवीश, कानून में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बहुत जमाने से प्रावधान है कि अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं तो उनके ऊपर आप कंपनसेशन ले सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है वो बात ये है कि झूठे मुकदमे, फर्जी धाराएं अक्सर पुलिस लगा देती है, उस मामले में कोर्ट कह रही है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को बर्खास्त किया जाए। अब देखिए, मामला ये है कि देश में जनतंत्र है अगर, तो उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी पर गलत धाराएं लगी, बाद में वो अदालत में साबित नहीं हुई, तो कभी भी हम पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं डालते हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि पुलिस जो पावर होल्ड करती है वो होल्ड करती है इन ट्रस्ट, तो उसको कभी भी उस ट्रस्ट को वायलेट नहीं करना चाहिए। पुलिस जब भी कोई धारा लगाए तो उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो उसको साबित कर पाएगी। जो भी जुर्म है उस जुर्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को पहले गौर और फिक्र करके पुलिस देख ले कि उनके पास क्या सबूत मौजूद हैं कि वो कल उसमें कन्विक्शन करा सकते हैं या सजा दिला सकते हैं। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या रवीश ये है कि हमारे यहां पुलिस और प्रोसिक्यूशन अलग अलग नहीं है। अमेरिका में और इंग्लैंड में एक पूरी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होती है, वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करती है कि क्या हमको इस मामले में केस दायर करना चाहिए या नहीं दायर करना चाहिए। मैं आपके शो पे बार बार बताता रहा हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, लोगों की लिबर्टीज का मामला है, बहुत सख्त मामला है। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल दफाएं लग गई आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए पुलिस को ऐसे सारे मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने मात्र से पुलिस में अकाउंटेबिलिटी आएगी, ये मुझे मुश्किल लगता है।
एक नहीं, हम आपको अनेक उदाहरण दे सकते हैं किस तरह बिना किसी जांच के सिर्फ फंसाने और परेशान करने के लिए किसी को भी घर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। यह केवल पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों के साथ और भी ज्यादा होता है। पढ़िए इस खबर को, 1 सितंबर 2020 की है। यही लिखा है ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ अवैध तरीके से एनएसए लगा दिया गया। 17 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सही साबित हुआ। तब फिर अवैध रूप से किसी के भी खिलाफ एनएसए लगाने वाले किसी भी अफसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इंडियन एक्सप्रेस ने तो पूरी सीरीज निकाली, बताया कि 120 में से 94 मामलों को, एनएसए के 94 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। राजद्रोह नहीं होगा या हटाकर ताली बजवाने और हेडलाइन लूटने से पहले इन तथ्यों को सामने रखिए और पूछिए कि राजद्रोह का कानून हट भी जाएगा तो क्या बदल जाएगा। इस कानून को लेकर जब सुनवाई चल रही थी तब बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से उसकी नीयत का भी पता चल रहा था। अदालत बार बार साफ कर रही थी कि इसका इस्तेमाल गला घोटने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में यह लिखा था कि सरकार में आने पर राजद्रोह की धारा 124 से समाप्त कर देंगे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना भी की।
भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, देश को गाली देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना बनाई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है, जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
वैसे राजस्थान सरकार ने भी 124A की धारा का इस्तेमाल किया है। लंबे समय तक केंद्र सरकार इसी लाइन पर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखती रही। केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि अगर दुरुपयोग भी होता है तब नागरिक के पास कोर्ट है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हर किसी से नहीं कह सकते कि कोर्ट चले जाइए और महीनों जेल में रहिए। तब जाकर केंद्र ने कहा कि वह कानून की समीक्षा के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले साल 12 मार्च के दिन शुरू हुआ था, जो वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। इस केस की सुनवाई जुलाई से शुरू हुई थी पिछले साल, और हाल हाल तक केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को चुनौती देने की याचिका का विरोध करती नजर आ रही थी। अच्छी बात है कि सरकार ने अपना रुख बदला है, लेकिन क्या दूसरे कानूनों के इस्तेमाल के बारे में उसका तरीका बदल जाएगा?
ए क्लियर कट मैसेज हैज गॉन टूडे टू सप्रेसर्स एंड सब्जुगेटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ डिसेंट ऑफ एवरीवन हु क्रिटिसाइजेस the autocratic and dictatorial rulers and their policy, that you can no longer suppress the voice of truth, suppress the voice of dissent.
सरकार जो है निरंतर रूप से मोदी जी की सरकार इस प्रयास में रहती है कि भारतीयों का फायदा हो, आगे देश बढ़े। इस बात को जब हलफनामे में रखा गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया है इस बात को, साथ ही साथ ये आदेश दिया है कि और नए केस ऐसे दर्ज ना हो और पुराने जो है वहीं के वहीं कुछ दिन के लिए रुक जाए जब तक ये पूरा विषय देखा जाए।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोर्ट को सरकार का सम्मान करना चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम दोनों के बीच स्पष्ट सीमाएं हैं और किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। पत्रकार पूछते रहे कि क्या आप यह कह रहे हैं कि अदालत का फैसला सही नहीं है, इस पर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में उनके ट्वीट से साफ हो गया कि कानून मंत्री के तौर पर वे आज के आदेश के बारे में क्या सोच रहे हैं। कानून मंत्री ने अंग्रेजी में लिखा, और यह हिंदी अनुवाद है, कि अगर कोई एक पार्टी है जो आजादी, लोकतंत्र और संस्थाओं के आदर के खिलाफ है तो कांग्रेस है। इस पार्टी ने हमेशा भारत को तोड़ने वाली ताकतों का साथ दिया और भारत को बांटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है, डरो मत। सुप्रीम कोर्ट को इसका श्रेय तो मिलना चाहिए कि पुलिसिया और सरकारी यातना के एक हथियार पर चोट पहुंची है, लेकिन यह बात मत भूलिए कि कुछ बदलने वाला नहीं है। हमने आपको बताया कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया जाता है, ऊपर से निर्देश आता है NSA लगाने का, NSA लग जाता है। बात इस पर होनी चाहिए कि जो भी अफसर ऐसे कानून लगाता है उसकी क्या जवाबदेही होगी। हम आपको एक और उदाहरण देना चाहते हैं। पिछले साल मार्च के महीने में हमने आपको प्राइम टाइम में दिखाया था कि किस तरह से सूरत में सिमी के एक सेमिनार में शामिल होने वाले 127 लोगों पर UAPA की धाराएं लगा दी गईं। इनमें से कई लोग कई महीनों तक जेल में रहे, 18 साल तक मुकदमा चला और कई लोग इस दौरान दुनिया से ही चले गए। मगर जब सबूत देने की बारी आई तो जांच एजेंसी के पास कुछ खास नहीं था। अदालत ने सभी को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संगठन से जुड़े होने के नाम पर किसी के खिलाफ UAPA की धारा नहीं लग सकती। क्या उसके बाद से ये सब बंद हो गया है? 2015 से 19 के बीच UAPA के तहत जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है उनमें से 2% से भी कम मामलों में सजा हुई है। अब आते हैं इतिहास पर। हमें तो यह इतिहास नहीं बताया गया, हमें सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आजकल इतिहास नहीं बताने की शिकायत करने वाले कुछ ज्यादा हो गए हैं। इनकी संख्या वास्तव में इतिहास पढ़ने वाले छात्रों से ज्यादा हो गई है। ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो तब इतिहास पढ़ना था और ना अब पढ़ना है। इन्हें एक चीज बताने की जरूरत है कि नए नए संदर्भों के मिलने के साथ साथ इतिहास में बदलाव होता है, या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2-4-10 लोगों के साथ जाकर किसी को घेर लेने से इतिहास नहीं बदला जाता है, उसे गुंडागर्दी कहते हैं। इन दिनों कई लोगों से सुना कि अशोक का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, उनकी सुविधा के लिए यह किताब बता रहा हूं। रोमिला थापर की किताब अशोक और मौर्य वंश का पतन। रोमिला थापर ने इस किताब की संदर्भ सूची में 219 किताबों का हवाला दिया है, यानी अशोक पर यही एक किताब नहीं है, दूसरी किताब नयनज्योत लाहिड़ी की भी है। उन्होंने भी किताब के अंत में सैकड़ों किताबों का हवाला दिया है जिसकी मदद से यह किताब लिखी गई है। इन किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है कि जब भी पढ़ाया जाएगा तभी आपको पढ़ना है और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जो कहा जाएगा उसी को पढ़ते रहना है। क्या आप इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल की पढ़ाई के दौरान इतिहास की किताबें पढ़ने का वक्त निकाल पाते हैं? है समय। कितने लोग अपने बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के बजाय इतिहास पढ़ने के लिए भेजते हैं, या तब भेजते हैं जब उनका लल्ला इंजीनियरिंग की परीक्षा में फेल हो जाता है। जब भी कोई ये कहता हुआ पाया जाए कि हमें इतिहास में यह सब नहीं पढ़ाया गया, तो उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है और स्कूल की पतली सी किताब में क्या पूरा इतिहास समेटा जा सकता है। क्या 10वीं की कक्षा में वे 5-10 हजार पन्नों की इतिहास की किताब पढ़ना चाहेंगे? ऐसा कहने वालों से पूछिए कि शादी और नौकरी के बाद उन्होंने इतिहास की कितनी किताबें खरीदी हैं और पढ़ी हैं, थैले से लेकर कोविड सर्टिफिकेट, पेट्रोल पंप से लेकर न्यूज चैनलों की हर बुलेटिन में कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आते। इसके बाद भी कोई उन्हें भूल सकता है, वह भी उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री भूल सकते हैं।
प्रधानमंत्री अमित शाह और आमार आदर गृहमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा डांगरिया धन्यवाद और अभिनंदन जनाइछो।
जुबान फिसल जाती है, इसे बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, लेकिन हमारा सवाल इतिहास के संदर्भ से है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब इतिहास को लेकर कोई दावा करने ऐतिहासिक इमारतों के बाहर नहीं पहुंच जाता है। कुतुब मीनार के बाहर जमा ये 10-5 लोग क्या इसका बदला लेने आए हैं कि इन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, या इतिहास का बदला लेने आए हैं? भारत में सबसे अधिक पत्रकार अगर किसी शहर में हैं तो वो दिल्ली में, और वहां भी इस तरह के संगठनों के बारे में, इन सदस्यों के बारे में कोई डिटेल जानकारी कहीं नहीं छपी है, ना किसी ने पता लगाने का प्रयास किया है कि ये कौन लोग हैं, इन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया तो कहां से ये इतिहास पढ़कर आ गए हैं। मीडिया में ये सभी जिस संगठन के बारे में बताए जा रहे हैं उसका नाम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है। इस फ्रंट का काम दुनिया भर के हिंदुओं को एक करना है। 2012 से ही ट्विटर अकाउंट है, लेकिन इस पते पर दुनिया भर से मात्र 492 फॉलोअर ही एकजुट हो सके हैं। वैसे इनके नेता का एक निजी अकाउंट है जिस पर 49,000 फॉलोअर हैं। खुद को भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता बताते हैं और लोनी से विधायक जो हैं बीजेपी के इन्हें फॉलो भी करते हैं। इस संगठन का नारा है सेवा, संघर्ष और सुरक्षा। वैसे तो इस देश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, थाने, कोर्ट और सेना है, लेकिन ये संगठन भी सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। मंगलवार के प्रदर्शन के बाद इनके नेता का कई चैनलों पर इंटरव्यू चलता रहा, ये डिबेट में हिस्सा लेते रहे। इस तरह के विवादों में आप संगठनों के नाम देखिए, अचानक से कहीं अवतरित नहीं होते। इनका पंजीकरण पुराना हो सकता है, लेकिन कई मामलों में इतिहास को लेकर सक्रियता बिल्कुल नहीं लगती। कोई महंगाई और बेरोजगारी के हालात नहीं बदलना चाहता, जिसे देखो इतिहास बदलने में लगा है। 3SA कलेक्टिव से यह किताब छपी है, द प्रेजेंट इन दिल्ली'स पास्ट। इसके लेखक हैं इतिहासकार प्रोफेसर सुनील कुमार। जीवन भर दिल्ली के इतिहास की छानबीन करते रहने वाले प्रोफेसर सुनील कुमार ने इस किताब में दिखाया है कि किस तरह आधुनिक समय में कुतुब मीनार को लेकर नए नए दावे किए जाते रहे, नए नए तथ्य भी सामने आए, लेकिन राजनीति बार बार उन्हीं मुद्दों पर लौटती रही है। इस किताब में किसी बात को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ इतिहास को देखने का नजरिया नाम बदलने और बदला लेने का नहीं है। कुतुब मीनार पर उनका यह लेख 61 पन्नों का है, और अलग से 9 पन्नों में बताया गया है कि इस लेख के लिए किन किन किताबों और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। इस छोटे से लेख के लिए संदर्भ सूची की संख्या 64 है। क्या आप इस किताब को पढ़ेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे कि अरे हाँ इतिहास तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। आपने श्रीलंका में देख लिया कि वहां किस तरह से बौद्ध शासन व्यवस्था की बहाली हो रही थी और उसके पीछे चीन से कर्ज लेकर उन नीतियों को लागू किया जा रहा था जिन्हें फेल होना ही था। हमने एक वीडियो देखा ट्विटर पर जिसमें सरकार का एक समर्थक अपनी जान बचाने के लिए कह रहा कि मुस्लिम लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन वही सिंगली लोग जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डूबे हुए थे उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि बांटने का काम अब बंद कर दो, नफरत की राजनीति बहुत हो चुकी। इस खबर से पता चलता है कि हलाल मीट बंद करने के मामले में श्रीलंका भारत से सीनियर हो सकता है। बीबीसी की यह रिपोर्ट 17 फरवरी 2013 की है। कट्टरवादी सिंगली बौद्ध संगठन मांग कर रहे हैं कि हलाल मीट की बिक्री पर रोक लगे। इस रिपोर्ट में एक बयान है, गौर कीजिए। एक संगठन के नेता कह रहा है कि हमारा देश सिंगली है और हम इसकी अनऑफिशियल पुलिस हैं। कुछ याद आया? ऐसा कहने की मूर्खता और ताकत धर्म के नाम पर ही इन्हें मिलती होगी। 21 मई 2019 की अलजजीरा की खबर है कि श्रीलंका में सिंगला लोगों ने मुस्लिम पड़ोसियों पर हमला कर दिया। उस साल देश के कई शहरों में मुसलमानों के घर और दुकानदारों को लूट लिया गया। पत्थर और पेट्रोल बम से हमले किए गए और कट्टर बौद्ध संगठनों ने 500 से अधिक घरों पर हमला किया जो मुसलमानों के थे। श्रीलंका का इतिहास तो नहीं बदला लेकिन देश बर्बाद हो गया। बौद्ध धर्म गुरु किसी काम के नहीं निकले बल्कि अब आंदोलन का हिस्सा हो गए। उनसे न शांति आई न समृद्धि आई। आज के हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि चीन का कर्जा लद गया मगर विकास नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर श्रीलंका कंगाल हो गया। जिन लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाया गया है और वे भूल गए हैं उनकी एक और त्रासदी बताना चाहता हूँ।
टर्न लेफ्ट टूवर्ड्स तुघलक रोड आफ्टर 200 मीटर, टर्न राइट टूवर्ड्स अकबर रोड आफ्टर 500 मीटर।
गूगल मैप ना हो तो घर और पार्टी मुख्यालय तक ये ना पहुंच सके। गूगल मैप वाली सखी का उच्चारण सुनकर ऐसा लगता है कि जनाब दिल्ली के आईटीओ से नहीं अंतरिक्ष से गुजर रहे हैं। इस दौर में सड़कों के नाम बदल देने से क्या मिल जाएगा? जब आप नाम कुछ भी रखें गूगल सखी उसका नाम कुछ और पुकारने लग जाती है। डू यू गेट माई पॉइंट? जहां भी मुस्लिम समुदाय के नाम हैं उसे बदलकर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या उस इलाके का कुछ और विकास हो जाता है? तो समझने की बात यह है कि जैसे गूगल सखी आपको शहर में घुमा रही है उसी तरह से नाम के नाम पर यह संगठन आपको टहला रहे हैं। क्या वाकई आपको नामों से इतिहास याद आ जाता है? राजनीति को इतना रूटीन मत बनने दीजिए कि सारी राजनीति फालतू विषयों पर होने लग जाए।
400 मीटर के बाद बाएं तरफ से बाहर निकले।
वैसे इतिहास बदलने के लिए लड़ने वाले नेता अगर दिल्ली के निगमों के स्कूलों के वेतन, जो टीचर हैं उनके वेतन के लिए लड़ाई लड़ लें, वेतन दिला दें तो गनीमत है। अभी कुतुब चल रहा है, कल अकबर चलेगा, परसों औरंगजेब चलेगा, फिर नरसो अब्दाली चलेगा। आप कितने टॉपिक पर रिसर्च करेंगे? रिसर्च से किसी को मतलब नहीं, इन्हें तो बिल्कुल नहीं। लखनऊ में प्राध्यापक रविकांत को इसी तरह घेर लिया गया। रविकांत ने कहा है कि जिस बयान को लेकर घेरा गया उसके बारे में उन्होंने ही कहा था कि ऐसा सुनने में आता है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसके बाद भी उन्हें घेरा गया।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में मंगलवार को हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों की ये भड़काऊ और आपत्तिजनक नारेबाजी। इन छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर एक चर्चा में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
वो कम्युनिस्ट मानसिकता से ग्रसित है क्योंकि कम्युनिज्म एक बीमारी है। लगातार अपने पद का इस्तेमाल करते हुए हिंदू सभ्यताओं और हमारी रीति रिवाजों पर कमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल उन्होंने हमारे सबसे पवित्र स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर पर कमेंट किया।
लेकिन प्रोफेसर रविकांत ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चर्चा के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पट्टाभी सीतारमैया की एक किताब फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी एक कहानी का जिक्र किया था जिसमें औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ने की वजह बताई गई थी। प्रोफेसर रविकांत के मुताबिक उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि वो इस कहानी की पुष्टि नहीं करते।
मेरे वक्तव्य को उस किताब और लेखक के रेफरेंस को काट करके दुष्प्राचारित किया गया मेरे खिलाफ कि मैं हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़का रहा हूं, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो केवल उस घटना का जिक्र कर रहा था जो कहानी के रूप में है, वो तथ्यात्मक रूप में भी नहीं है। मैंने इसको भी कहा, मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो फिर व्यक्त कर।
छात्रों की नारेबाजी के बाद प्रोफेसर रविकांत ने फेसबुक पर लिखा कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी कि उनके खिलाफ कैसी आपत्तिजनक और जातिगत टिप्पणियां की गईं और उनके परिवार की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी, उल्टा उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई।
मैं दलित समुदाय से आता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के मैं प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनका पालन करता हूं। और मुझे लगता है कि इसीलिए दलित होने के नाते मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि प्रोफेसर रविकांत ने पट्टा भी सीतारमैया की किताब का उद्धरण पूरी तरह सही नहीं दिया, लेकिन इस गलती से उनके खिलाफ हंगामे और आपत्तिजनक नारेबाजी का औचित्य नहीं बनता। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
कई इतिहासकारों, प्राध्यापकों और पत्रकारों ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन निंदा से ऐसी घटनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोफेसर हैं उन पर हमले हो रहे हैं, जो हमला करने वाले हैं वो इतिहासकार बन गए हैं। इसके बाद भी आपको शक है कि हम विश्वगुरु नहीं बन रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद इस बार बहुत कम रही है। जिन किसानों ने निजी कारोबारियों को गेहूं बेचे हैं उन्हें पैसे तो मिल गए, लेकिन जिन्होंने सरकारी समितियों को बेचे हैं वे 1.5 महीने से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं।
जगदीश मीणा मुबारकपुर से भोपाल की करौंद मंडी आए, 3 ट्रॉली गेहूं लाए थे। नीलामी में MSP से 105 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिले हैं, पैसा भी फौरन मिल गया, वो खुश हैं।
एक तो सोसाइटी में पैसे बहुत लेट आ रहे हैं, पैसे यहाँ नगद पैसा पेमेंट मिल रहा है, इधर तुलवाओ इधर पेमेंट पूरा। इस बार दिक्कत नहीं, पिछली बार थी दिक्कत जब पार्टी जेस करते थे, इस बार कोई दिक्कत नहीं।
कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें कम होंगी इस बार,
लगभग
भी अच्छा मिला है।
लगभग।
नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने 50 बोरे बेचे हैं, MSP से लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिले हैं। भगवान सिंह को भी फायदा हुआ, लेकिन थोड़े दुखी हैं क्योंकि 500 क्विंटल बहुत पहले बेच दिया था।
खुश हैं
अपन तो, जो भी मिल रहा वो,
जो भी क्यों मतलब कम मिलता तो
नहीं,
दुखी रहेगा
नहीं, नहीं। जो भी नसीब का हो वो कहीं नहीं जाता।
इस पे 7,000 रुपए बढ़ेंगे, ये समझ लो आपको हमारे ट्रैक्टर का डीजल ही डलेगा, हमारा खर्चा निकलेगा। अफसोस तो हो रहा है सर, 200 रुपए घाटे में जाएंगे, 500 क्विंटल पीसी बेची है तो 1,00,000 रुपए घाटा पड़ा है।
कारोबारी कह रहे हैं बम्पर आमद है, किसान खुश हैं, सरकार ने कृषि टैक्स की भी छूट दी है।
जो किसान की जैसे समर्थन मूल्य पे MSP पे 2,015 रुपए गेहूँ बिकती थी, यहाँ मिनिमम हल्के से हल्की गेहूँ 2,000 रुपए बिक रही है। मालवा शक्ति 2,150 बिक रही है, क्रास और लोकन का कलर शायद 2,300 बिक रही है, शरबती 3,500 रुपए तक बिक रही है। इस बार क्योंकि MSP से ऊपर मंडियां ही बिक रही है तो आदमी किसान MSP पे क्यों देगा। मध्य प्रदेश शासन ने भी उसमें एक्सपोर्टरों को कृषि टैक्स की भी छूट दी है, वो चाहे क्लेम कर सकते हैं रिफंड का।
लेकिन महुआ खेड़ा से आए राधु सिंह मीणा को करौंद मंडी में तो अच्छा भाव मिल गया, सोसाइटी में बेचे गेहूं का पैसा 1 महीने से नहीं आया है। कहते हैं डिफॉल्टर हो रहे हैं, परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
7 तारीख को तुलवाई थी, आज तक पेमेंट नहीं आई।
कौन सी सोसाइटी में?
ये रंगई विधि साउंड चौक से वेयर हाउस पे।
अभी तक 1 महीने हो गया, कितना गेहूं बेचा था वहाँ पे?
300 बोरे।
300 बोरे और यहाँ क्या कितना माल लाए?
यहाँ तो 85 बोरा हुआ सर, आज तक पेमेंट नहीं आई, उधारी वाले परेशान कर रहे हैं।
कई सारे आपके साथियों का पेमेंट नहीं आया,
बहुत कुछ ही का नहीं आ रहा।
तो यहाँ खुश है कि नकद पैसे?
यहीं खुश है साहब, वहाँ तो कोई मतलब नहीं मिला बेचने से, परेशान हो रहा है, पर कर्जा वाले पैसे मांग रहे हैं, डिफॉल्टर हो रहा है मंडी से बैंकों से।
मध्य प्रदेश से अभी तक 4,81,000 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका है, जिसका मूल्य 700 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 1,76,000 मीट्रिक टन था, जिसकी कीमत लगभग 420 करोड़ रुपए थी। 2020-21 में 87,000 मीट्रिक टन, जिसकी कीमत थी 175 करोड़ रुपए। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने का इस बार लक्ष्य रखा है। निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को 1,000 रुपए में प्रदेश स्तरीय एकल लाइसेंस दिया जा रहा है। हालांकि इस वजह से राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 128 लाख मीट्रिक टन था।
सरकारी खरीद कम हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब यह नहीं कि हम खरीद नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह है कि अच्छे दाम मिले, किसान को ज्यादा फायदा हो, और इसलिए गेहूं एक्सपोर्ट हो यह हम कोशिश कर रहे हैं, गेहूं विदेश में निर्यात कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया मध्य प्रदेश का गेहूं खाए।
मध्य प्रदेश का गेहूं अफ्रीका, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश के बाजारों में पहुंच रहा है। जानकार मानते हैं इसका दीर्घकालिक फायदा है, राज्य को नए बाजार मिलेंगे, मांग आपूर्ति का संतुलन बनेगा, विपणन की दिक्कतें कम होगी, सरकार विपणन के कई चैनलों को पाट सकती है जिससे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकता है। लेकिन एक अहम सवाल है, गेहूं की सरकारी खरीदी कम होने से क्या दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि सरकारी खरीद का मकसद खाद्यान्न सुरक्षा और गरीबों को पीडीएस से सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
दूसरा इसका एक खामियाजा है ये कि जिस हिसाब से अभी हमारे पास जो स्टॉक है और जो स्टॉक में जितना खराब स्टॉक की मात्रा ज्यादा है, तो अगर आने वाले समय में हमने उसको सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया, उसका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया और दूरदृष्टि के साथ में अभी हमने हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आएगी।
केंद्र ने 2020-21 में अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 465 लाख टन गेहूं का आवंटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी थी, जबकि साल 2021-22 में रबी मार्केटिंग सीजन में सरकार ने 433 लाख टन गेहूं की खरीदी की थी। अब सवाल ये तो उठता ही है कि सरकार अगर इस बार आधी खरीदी करती है तो गरीबों जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं का इंतजाम कहां से होगा। 1 मई 2022 को केंद्रीय पूल में 303 लाख 46 हजार मीट्रिक टन गेहूं था, जुलाई में सरकार के पास लगभग 575 लाख टन गेहूं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं फिलहाल दुनिया का पेट भरनी निकली सरकार को खुद के लोगों का पेट भरने के लिए गेहूं आयात न करना पड़े। मध्य प्रदेश के किसान पंजाब और हरियाणा की तरह गर्मी और लू के थपेड़ों से ज्यादा परेशान नहीं हैं, क्योंकि यहां पर बुआई थोड़ी पहले होती है, इसलिए पैदावार और किसान दोनों के चेहरे इस वक्त भी खिले हुए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
नीट पीजी की परीक्षा के छात्र बहुत ज्यादा परेशान है। 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीजी करने का मौका आया तो तैयारी का समय नहीं मिला। उनका कहना है कि हाल तक पिछले साल की परीक्षा के तहत एडमिशन की प्रक्रिया चली है, जिसमें वे सारे व्यस्त थे, नई परीक्षा की तैयारी का मौका नहीं मिला। मैंने उन्हें पिछली बार भी कहा था कि प्राइम टाइम में दिखाने से सरकार उनकी मांग मान लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात सही साबित हुई, लेकिन छात्रों का कहना है कि एक बार और कोशिश करने में बुराई नहीं है। आप ब्रेक ले लीजिए।
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने 3 दिन चली बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा करते हुए वहां रोज दर्शन और पूजा पाठ की इजाजत की मांग से जुड़ी याचिका दी थी। 26 अप्रैल को अदालत ने सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उन्हें ईद के बाद 3 दिन में जांच पूरी करनी थी और 10 मई को नतीजा अदालत में रखना था, लेकिन मस्जिद पक्ष ने सर्वे टीम के अंदर जाने पर एतराज जताया और एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की। इस पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और कोर्ट ने गुरुवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी की जिला अदालत बाहर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही। श्रीलंका में लगातार चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए वहां की सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के इस आदेश के बावजूद श्रीलंका के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोलंबो के करीब कई दुकानों को जला दिया गया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे के रिजॉर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। इस बीच श्रीलंका में कई विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि हिंसा के बहाने सेना को सत्ता में आने का बहाना मिल सकता है। सड़कों पर भारी संख्या में सेना के जवानों और टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के उतरने से इन अटकलों को हवा भी मिली, लेकिन सेना ने इन अटकलों को बेबुनियाद बताया है।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।